दिन भर शुक्रवार 29 अप्रैल मैं हूं संदीप सोनी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर संसद के भीतर बाहर आरोप प्रत्यारोप तीसरे दिन भी जारी।
सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए, देश की जनता के सामने जवाब देना चाहिए।
अमित शाह जी हमसे उम्र में बड़े हैं, पर वो कानून की शिक्षा कांग्रेस को ना दे तो अच्छा है।
केंद्र में कांग्रेस लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में। विवेचना में आज याद करेंगे भारत के मशहूर ब्रॉडकास्टर मेलविल डिमेलो को।
गिर फॉरेस्ट में वो 7 दिन रहे थे, 3 दिन तो मचान पे रहे थे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ। शेर तो आया नहीं कोई, तो इन्होंने फिर राजकोट प्रोडक्शन असिस्टेंट को भेज के एक गोट की रिकॉर्डिंग वाली आधे घंटे के लिए, उसको सुन के 7 लाइनेसेस वहाँ आई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले को लेकर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि यह डील कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि इस सौदे के लिए निकाला गया टेंडर किसके इशारे पर निकाला गया था और इसके लिए फील्ड टेस्ट भारत में क्यों नहीं हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के दफ्तर को आदेश दिया है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का ब्यौरा दें ताकि छात्रों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सूचना आयोग ने गुजरात और दिल्ली विश्वविद्यालय को भी आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की शिक्षा संबंधी जानकारी मांगने संबंधी आरटीआई के भी जवाब दिए जाएं। इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री से जुड़े एक आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया था। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने सूचना आयुक्त से उनकी डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय ने कहा है कि साल 2009 में राष्ट्रपति जेकब जुमा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप खारिज करने का फैसला गलत था और इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी का कहना है कि उसे इस पर विचार करने के लिए और फैसला लेने के लिए कुछ समय चाहिए। जुमा के वकील का कहना है कि उन पर लगाए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कोर्ट का कहना है कि अधिवक्ता को दबाव में आकर आरोपों को खारिज नहीं करना चाहिए था। न्यायाधीश आबरे लिदवाबा ने कहा, हमें लगता है कि वे दबाव में आ गए और उन्होंने जुमा के खिलाफ केस को बंद कर दिया। ऐसे में उन्होंने एक गलत निर्णय लिया। अपने हालात को देखते हुए उन्होंने पद की जो शपथ ली थी उसके महत्व को अनदेखा किया, जिसके अनुसार उन्हें डर और किसी का पक्ष लिए बिना काम करना चाहिए था। इसीलिए हमें लगता है कि जुमा को आरोपों का सामना करना चाहिए। ये थे न्यायाधीश आबरे लिदवाबा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला ऊंची आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर 12 सप्ताह की रोक लगाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि गैरकानूनी तरीके से आदर्श सोसाइटी बनाने के लिए नौकरशाह और राजनेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। आदर्श सोसाइटी दक्षिणी मुंबई के कोलाबा में है, जिसे पास में मौजूद रक्षा संस्थानों के लिए खतरा माना गया था। यह तब विवादों में आई थी जब इसके निर्माण में कथित तौर पर नियमों और कानूनों के उल्लंघन होने की बात सामने आई थी। नॉर्वे में राहत कर्मियों का कहना है कि उन्होंने आज पश्चिमी शहर बर्जन के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जगह से 11 शव बरामद किए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर विवाद की चर्चा आज तीसरे दिन संसद में जारी रही। संसद के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। यूपीए सरकार के दौर में वर्ष 2010 में कुल 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, लेकिन रिश्वत और धांधली के बीच इस सौदे को रद्द कर दिया गया था। हाल में इटली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड ग्रुप की इतालवी कंपनी फिन मैकेनिका के 2 अधिकारियों को इस सौदेबाजी में भ्रष्टाचार के लिए जेल की सजा सुनाई है। अदालत में भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। भाजपा कहती है कि ये नाम रिश्वत से जुड़े हैं। आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया और कहा कि सोनिया गांधी दुनिया को बताएं कि सच क्या है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर पर उठा विवाद आज तीसरे दिन भी संसद में चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर आक्रामक रुख अपनाया और एक दूसरे पर तीखे इल्जाम लगाए, लेकिन संसद के बाहर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक बार फिर कहा कि वो जनता को सौदे की असलियत बताएं।
कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा है कि सारे पैसे जो बैंक गारंटी के थे वो वापिस आ गए, भारत ने एनकैश कर ली है, वो भी सत्य से परे है, पूरे पैसे वापिस नहीं आए हैं, इसका एक ही हिस्सा वापिस आया है। तो इस सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए और मैं मानता हूं उन्होंने स्वयं देश की जनता के सामने प्रेस के सामने आकर जवाब देना चाहिए। और मैंने पहले कहा जैसे उल्टा चोर कुटवाल को डांटे उससे अनुरूप अब तो कम से कम शर्म कर ये प्रक्रिया में से कांग्रेस ने बाहर आना चाहिए।
इसके जवाब में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अमित शाह ज्यादा न बोलें तो अच्छा होगा।
क्या केवल निम्न स्तर के इल्जाम लगाकर ओछी राजनीति करके या कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ षड्यंत्र करके आप सच्चाई से छुप सकते हैं? जवाब है नहीं। अमित शाह जी हमसे उम्र में बड़े हैं और भाजपा अध्यक्ष के तौर पर हम उनका सम्मान करते हैं, पर वो कानून की शिक्षा कांग्रेस को ना दें तो अच्छा है, क्योंकि वो वही व्यक्ति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से वर्षों तक तड़ी पार करके रखा था।
मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के सौदे में रिश्वतबाजी का इल्जाम कांग्रेसी नेताओं के गले की फांसी बन चुकी है।
मुझे लगता है कि इटालियन कोर्ट्स में जिस प्रकार से करप्शन के चार्जेस प्रूव हुए हैं और साथ ही जिस प्रकार से एलिजिबली कांग्रेस के किसी नेता का नाम उन डॉक्यूमेंट और दस्तावेज में उभर कर आया है, ये साफ इस बात को व्यक्त करता है कि अगस्ता वेस्टलैंड का ये स्कैम कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सोनिया गांधी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती।
मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता सोनिया जी की जगह मान लो मेरा नाम होता उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। अभी तक मोदी जी आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने में। सारी एजेंसीज मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती, सीबीआई, ईडी, फीडी, जितनी इनके पास है, एसीबी, पैरामिलिट्री फोर्स सारी, और घसीट के ले जाते मेरे को अपने घर से। आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने। सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे मोदी जी, क्यों नहीं कर रहे? सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही?
सोनिया गांधी ने विवाद उठने के पहले ही दिन कहा था कि उनके खिलाफ लगे सारे इल्जाम गलत हैं। उन्होंने कहा कि ये यूपीए सरकार ही थी जिसने सौदे में हुए भ्रष्टाचार के इल्जाम पर सीबीआई जांच शुरू करवाई थी। उनका कहना था कि भाजपा सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो चुके हैं, अब तक जाँच क्यों नहीं पूरी की गई? सीबीआई की तरफ से इस पर अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। यूपीए सरकार के दौर में 2010 में 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 12 अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, लेकिन रिश्वत और किकबैक के इल्जाम के बीच इस सौदे को रद्द कर दिया गया था। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांग्रेस के निशाने पर हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदे थे जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने कथित तौर पर गड़बड़ियां पाई हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में बताया,
जो पीएससी की कमेटी है वो एक कमेटी है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। और क्योंकि ये सारा मामला अब प्रकाश में आया है जब केंद्र में पार्लियामेंट में इस कंपनी के विरुद्ध इस प्रकार की बातें खुली गई, तब स्वाभाविक है कि उस कंपनी ने उसी हेलीकॉप्टर को अगर 2-3 जगह बेचा है तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उसकी भी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं कि अगर सीबीआई केंद्र सरकार ने जो हेलीकॉप्टर नहीं खरीदे उसकी जांच कर सकती है, तो राज्य सरकार जिसने हेलीकॉप्टर खरीदा था उसकी जांच क्यों से पता पड़ेगा कि कोई दोषी था कि नहीं?
उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी इस मामले में चारों तरफ से घिर गई है, इसलिए ध्यान बटाने के लिए वो ऐसा कर रही है।
5 सालों तक इनकी सरकार रही, तब ये जांच कर लेते। तो ये तो अब क्योंकि उसमें ये फंस गई है, इनकी पूरी सरकार इनकी फंस गई है, कांग्रेस के नेता पूरे फंस गए हैं वहाँ पे, तो उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं।
परनामी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती गई। इस पर राज्य की जनलेखा समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है, इसलिए अब और जांच का कोई औचित्य नहीं है। मगर पायलट कहते हैं कि इस खरीद से प्रदेश को 1,14,00,000 का चूना लगा है, तो जांच का दायरा जरूर बढ़ाया जाना चाहिए।
मेरा तो सिर्फ इतना सा अनुरोध है क्योंकि इस कंपनी को जब इतने बड़े पैमाने पर जांच हो रही है और भारत सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने टीम को कैंसिल कर दिया था, सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दी थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, अगर उसकी जांच अनिवार्य है और हो रही है तो राजस्थान सरकार जिसने हेलीकॉप्टर खरीदा है और ज्यादा पैसे देकर कंपनी को मुनाफा कमाया तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, हम तो अच्छा ये आरोप कांग्रेस का नहीं है, ये आरोप तो सीएजी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में कहा है कि 1,14,00,000 रुपए का मिशन ग्रुपेज में फंड हुआ है एक्सचेकर का। अब इसका इसकी बेहतर जानने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कॉम्पिटेंट हैं ये क्लीन चिट देने के लिए, वो तो जांच के आधार पता पड़ेगा कि सच्चाई और झूठ क्या है।
बहरहाल बेहद गर्मी की लपट झेल रहे राजस्थान में अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले से राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प होगा कि यह विवादित हेलीकॉप्टर 2011 में कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके बाद से इसका उपयोग नहीं लिया जा रहा। जयपुर से आभा शर्मा।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2007 में अगस्ता A-109 पावर हेलीकॉप्टर की खरीद में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में पहली बार यह बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 2007 में अगस्ता A-109 पावर हेलीकॉप्टर की निर्माता इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से अधिक कीमत देकर हेलीकॉप्टर की खरीदी की थी। कैग दस्तावेजों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने ग्लोबल टेंडर बुलाने के बजाय सीधे अगस्ता वेस्टलैंड से ही हेलीकॉप्टर खरीदी का फैसला ले लिया और फिर जब बात नहीं बनी तो अगस्ता वेस्टलैंड के ही खास मॉडल का ग्लोबल टेंडर बुलाकर उसे ही टेंडर दे दिया गया। कैग के दस्तावेजों के अनुसार अगस्ता ने 2005 में झारखंड सरकार को भी एक हेलीकॉप्टर बेचा था जिसकी कीमत लगभग 56,00,000 अमेरिकन डॉलर थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही हेलीकॉप्टर लगभग 66,00,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदे गए। कैग ने रिपोर्ट में लिखा है अगस्ता कंपनी का ही हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक खास ब्रांड और विशिष्ट मॉडल का टेंडर मंगाकर अधिक कीमत में खरीदना न तो किसी भी प्रकार से सहभागिता को बढ़ाता है और न यह न्यायोचित है। कैग की यह रिपोर्ट दूसरे 10 सरकारी दस्तावेजों की तरह ही पड़ी रहती, लेकिन जब 2013 में केंद्र में अगस्ता हेलीकॉप्टर का विवाद सामने आया तो कैग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ में बहस शुरू हुई। अब जब इटली की अदालत के फैसले के बाद अगस्ता को लेकर दिल्ली में भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश शुरू की है तो छत्तीसगढ़ में फिर से अगस्ता हेलीकॉप्टर के दस्तावेज सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अलग अलग मंचों पर राज्य की भाजपा सरकार को घेर रही है। भाजपा का संकट यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार और भाजपा के नेता राज्य में हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर हुई गड़बड़ी पर कुछ भी कहने बताने से बच रहे हैं।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार कांग्रेस के निशाने पर, ये थे रायपुर से आलोक पुतुल।
बीबीसी इंडिया बोल।
देश के कई हिस्सों में बिन पानी हाहाकार, लातूर में नदियां सूखी, लोग बूंद बूंद को तरसे, दूसरी ओर क्रिकेट की पिचों को तर करने के लिए हजारों लीटर पानी बहाया जाए, सूखे और अकाल जैसी स्थितियों के लिए कौन है जिम्मेदार? इस बार इंडिया बोल में आंखें खोलने वाली जानकारी देंगे पानी विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर। कार्यक्रम में अपनी राय जाहिर करने के लिए शनिवार 30 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
लगातार 7 घंटे तक महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाने वाले मेलविल डिमेलो को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टर माना जाता है। कई वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री करने वाले मेलविल डिमेलो प्रख्यात समाचार वाचक भी थे। उनके रेडियो रूपक लाली एंड द लॉयन ऑफ गीर को प्रतिष्ठित प्राइज इटालिया दिया गया था। मेलविल डी मेलो की 103वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowds. Now the fire is caught, and more pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air, policemen sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse.
ये आवाज है भारत के महानतम ब्रॉडकास्टर मेलविल डी मेलो की, जिन्होंने महात्मा गांधी की शव यात्रा की लगातार 7 घंटे तक कमेंट्री की थी। इसको भारतीय रेडियो इतिहास की सबसे शानदार कमेंट्रीज में गिना जाता है, जिसने 17 साल के जसदेव सिंह को कमेंट्री को अपना पेशा बनाने के लिए प्रेरित किया था।
मेलविल डी मेलो जो मैंने पहली कमेंट्री सुनी थी, जिसने मुझे मुतासिर किया, वो थी किसका फ्यूनरल था, महात्मा गांधी का। वो कमेंट्री मैं सुन रहा था, कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ कि मैंने मेरी माँ से कहा पंजाबी में कि बीजी मैं तो हिंदी में कमेंटेटर बनूंगा। तब तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, हिंदी का एक अक्षर भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री करूँगा तो वो हंस दी और बात खत्म हो गई। उसने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ए न्यू स्टार विल शाइन इन द स्काई टुनाइट आफ्टर गांधीज डेथ। ऐसी ऐसी सिमिलीज देता था कि रोंगटे खड़े कर देते, वो उनसे सीखा मैंने।
1913 में जोधपुर में जन्मे मेलविल डी मेलो ने भारतीय सेना के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने प्रसारण को अपना पेशा बनाया। 1968 में वो बुश हाउस लंदन आए थे और तब हमारे पुराने साथी आले हसन ने उनसे इंटरव्यू किया था।
I hated school. I was very fond of fishing at a very young age. I'm still very fond of fishing, and I used to love shikar. I was born in an Indian state in Rajasthan, one of the princely states, and of course, as a young boy, I was extremely untidy and tried to be.
मुझे स्कूल ना पसंद था। मुझे बचपन से ही मछली पकड़ने का शौक था। अब भी ये मेरा पसंदीदा शौक है। बचपन में मैं बहुत ही अव्यवस्थित था। अपनी चीजों को इधर उधर छोड़ देता था, जिन्हें मेरी माँ उठाया करती थी। मेरी पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। वहाँ शेक्सपियर के लिए मेरे मन में प्यार पैदा हुआ। मैंने खास तौर से अंग्रेजी भाषा से जुड़े विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गणित में बहुत ही कमजोर था, लेकिन मैं अंग्रेजी में इतने अंक लाता था कि गणित में बहुत कम अंक लाने के बावजूद मैं इम्तिहान पास कर लेता था। उस जमाने में हमारे अधिकतर अध्यापक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े होते थे।
गांधी के अंतिम संस्कार की कमेंट्री के बाद उनका नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया। वो आकाशवाणी के लिए अंग्रेजी रूपक बनाते थे और रात 9 बजे का अंग्रेजी का बुलेटिन पढ़ा करते थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन की पूर्व उप महानिदेशक और अपने जमाने की मशहूर ब्रॉडकास्टर चित्रा नारायण याद करती हैं।
वो मैं स्कूल में पढ़ती थी नैनीताल में, ये 40s की बात है। शाम को वी मेड इट अ पॉइंट, मैं और मेरे भाई जो पढ़ते थे वहाँ, 9 बजे की जो न्यूज है, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज रेड बाय मेलविल डी मेलो, इस आवाज को सुनने के लिए हम लोग रेडियो ऑन करते थे। न्यूज में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, मगर ये किस तरह बोलता है, इसकी आवाज जो है कैसे गूंजती है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनका एक्सेंट, इनकी डिक्शन, इसको किस तरह अंग्रेजी बोली जाती है, किस तरह आदमी जो है डायलॉग कर सकता, बात कर सकता, इम्प्रेस कर सकता लोगों को, उसको सुनने के लिए मैं और बहुत लोग मैंने सुना। उसके बाद मैं जब बाद में लोगों से मिली कॉलेज वगैरह में, कहते अरे यार डी मेलो थे और रोशन मेनन थी, वो इन दो आवाज़ों को कोई बीट नहीं कर पाया।
1962 में जॉन एफ कैनेडी के निधन पर मेलविल डी मेलो ने एक खास फीचर बनाया था, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी JFK लाइब्रेरी वॉशिंगटन में सुरक्षित रखी हुई है।
प्रेसिडेंट जॉन फिट्ज़जेरल्ड कैनेडी इज डेड। हिज डेथ, स्विफ्ट एंड अनएक्सपेक्टेड, हैज लेफ्ट काउंटलेस पर्संस इन आवर कंट्री, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हुम हैड नेवर सेट आइज ऑन हिम बट हु एडमायर्ड हिम विद अ सेंस ऑफ पर्सनल शॉक।
1964 में उन्हें उनके रेडियो रूपक लाली एंड द लायंस ऑफ गीर के लिए प्रतिष्ठित प्राइज इटालिया मिला था। इस पूरे रूपक की रिकॉर्डिंग उन्होंने गीर के जंगलों में शेरों के साथ की थी। उस जमाने में उनके साथ काम करने वाले ईश्वर लाल भाटिया याद करते हैं।
गिर फॉरेस्ट में वो 7 दिन रहे थे, 3 दिन तो मचान पे रहे थे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ। शेर तो आया नहीं कोई, तो इन्होंने फिर राजकोट प्रोडक्शन असिस्टेंट को भेज के एक गोट की रिकॉर्डिंग वाली आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर बडोवा टेप रिकॉर्डर हुआ करते। सोनी तो बहुत बाद में आए, तो बहुत बड़ा डब्बा टाइप होता था बड़े स्पून के अंदर, वो नीचे मचान के नीचे उन्होंने चला दिया। उसको सुन के 7 लाइनेसिस वहां आई, ऊपर ये निकन कैमरा लेके अपने बैठे हुए थे, फोटोग्राफ खींच रहे थे, शेर आए, उन्होंने कैमरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसको 9 साल लग गए राइट ऑफ करवाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उनको इनको इटालिया प्राइज मिला था उसके ऊपर, दैट वाज दी वर्ल्ड ओवर बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग प्राइज, यू नो इटालिया प्राइज, यू नो।
जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि आपकी नजर में आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने साफ कहा,
वेल आई हेट टॉकिंग अबाउट माय अचीवमेंट्स बिकॉज इट्स जस्ट लाइक पीपल आस्क मी द क्वेश्चन व्हाट इज योर बेस्ट प्रोग्राम, आई से माय नेक्स्ट।
मैं अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि फिर लोग पूछने लगते हैं कि आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति कौन सी है, तब मेरा जवाब होता है अगली। मैं माइकल मगरिज के उस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि मरी हुई मछलियां ही लहर के साथ चलती हैं। हालांकि मुझे मछलियां पकड़ना पसंद है, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं धारा के खिलाफ भी उसी आसानी से बह सकूं जितना उसके साथ।
1964 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पहली बार हॉकी फाइनल की कमेंट्री की। जसदेव सिंह भी पहली बार डिमेलो के साथ टोक्यो गए, उन्होंने उनसे कमेंट्री के गुर सीखे। जसदेव बताते हैं कि डिमेलो अक्सर उनकी टांग खींचते थे।
जो छेड़ता था मुझे, वो कहता तेरी वाइफ से कहूंगा कि तू बाहर जाता है ना, तो लड़कियों में बहुत घूमता है, जबकि मैं इसके उल्टा था। मेरा पहला ओलंपिक डिमेलो के साथ टोक्यो ओलंपिक 64 था, और उस नाम सजेस्ट करने वालों में एक तो डिमेलो खुद थे। तो हम टोक्यो में जब गए तो वहाँ जो लोकल अकाउंटेंट था वो एम्बेसी में, वो हमको ले गया ड्रिंक्स के लिए, और मैं शराब पीता नहीं, तो वहाँ पर डिमेलो ने छेड़ दिया उस लड़की को कि जसदेव डजंट लाइक टू बी किस्ड, और वो मेरे पीछे पड़ गई, आप सच मानिए। अब मैं बचके में कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, फिर मैंने उससे थोड़ा सख्ती से कहा, लुक आई डोंट वांट दिस एंड आवर ट्रेडिशन डजंट अलाउ अस।
उस जमाने में मेलविल डिमेलो के सबसे नजदीकी दोस्त होते थे भारत में बीबीसी के संवाददाता मार्क टली।
बहुत तंदुरुस्त आदमी था, जैसा अंग्रेज फौज था, सख्त अंग्रेज ले जा है, और उसके आवाज जो है बहुत जैसा गहरी आवाज थी, और वो बिल्कुल अंग्रेज फौजी की जैसा बात करते थे। वो हिंदी में बात कभी नहीं करते थे। और एक बार मुझे याद आता है कि डिमेलो साहब एक दफ्तर में बैठ रहा था, और डिमेलो साहब चीफ प्रोड्यूसर इंग्लिश था, और एक उसका दोस्त शिवसागर मिश्रा चीफ प्रोड्यूसर हिंदी था। और एक बार मैं वहाँ बैठ रहा था, और डिमेलो साहब आ गया और शिवसागर को बोला कि देखो ये सरकार पागल हो गया शिवसागर जी। शिवसागर से क्या मतलब है? He said, today the director general tried to conduct a meeting in Hindi and he didn't understand the word. वो एक लफ्ज हिंदी नहीं समझा। और शिवसागर मिश्रा चुपचाप से बोला कि हाँ हाँ ठीक है डिमेलो साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन बात ये है कि वो भी अंग्रेजी नहीं समझता है। लेकिन बहुत वफादार भारतीय था, बहुत ही सख्त वफादार।
70 के दशक में सुनी टंडन ने मेलविल डिमेलो को ही देखकर और सुनकर अपने कमेंटेटर करियर की शुरुआत की थी।
मेलविल डिमेलो तो मैं कहूंगा एक अंग्रेजी का जो फ्रेज है, लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी थे। जब शुरुआत में मैं कॉलेज स्टूडेंट था और ब्रॉडकास्टिंग करने जाता था, युवानी के लिए हम लोग ने शुरू किया था, उम्र रही होगी करीब 16-17 साल की, अक्सर कॉरिडोर में मिल जाते थे, लेकिन उनकी आवाज़ पहले सुनाई देती थी। ही हैड अ वेरी बूमिंग वॉइस, और काफ़ी कुछ हद तक लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि वो बड़े मुँहफट थे, न्यूज़ भी पढ़ते थे और हम लोग आदि थे सुनने में, द न्यूज़ रेड बाय मेलविल डिमेलो, बहुत फोर्सफुली वो पढ़ते थे। जब मैंने पहली अपनी रिपब्लिक डे की कॉमेंट्री करी, तो मैं बिल्कुल नया नया था, अभी ग्रेजुएट किया था। रिपब्लिक डे में सबसे इम्पोर्टेंट कॉमेंट्री साल की मानी जाती थी ऑल इंडिया रेडियो में, ऑब्वियसली मेलविल डिमेलो वॉज द सीनियर मोस्ट कॉमेंटेटर दैट ईयर। तो बहुत ही अच्छा टाइम था कि एक ऐसे दिग्गज ब्रॉडकास्टर के साथ बैठ के एक ही बूथ में कमेंट्री करें, वही गाड़ी मुझे पिक कर रही है, फिर मेलविल डिमेलो को पिक कर रही है, डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, और उनके घर में बैठ के चाय पी और फिर चले कमेंट्री करने, वापस आके भी चाय पी, और वो उनको जो सुन के उनके साथ बैठ के जितना सीखने को मिला, मेरे ख्याल से इट वॉज द बिगेस्ट, एक तरह से कही मेरी कक्षा थी, मैंने सीखा सबसे ज्यादा उनसे कॉमेंट्री के बारे में।
डिमेलो के काम की खासियत थी बेइंतहा मेहनत और उनका पेशेवर अंदाज।
पंक्चुअलिटी में बड़ा तगड़ा विश्वास था। मैं एक दो 9:32 पे पहुंचा था, 9:30-4:30 का टाइम होता था, तो कहने लगे मिस्टर भाटी यू कम लेट। तो मैंने कहा नहीं सर, 10 मिनट तक आई एम परमिटेड टू कम। कहते शो मी द इंस्ट्रक्शन, मैंने बता दी उनको, तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट योर राइट, माई डिस्क्रिशन। तो आगे से 9:30-4:30 आई, और उसके बाद उन्होंने किसी भी स्टाफ मेंबर को कभी भी 9:30 के बाद नहीं आया। दूसरा थे वो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन्स अगर कहीं प्रोग्राम बांग्लादेश का बनाना है तो बांग्लादेश की रिकॉर्डिंग लेंगे, अगर जम्मू कश्मीर का बनाना उनके पास आर्काइव में रिकॉर्डिंग होंगी भी तो भी उनको यूज नहीं करते थे, वो एक्चुअली साउंड में विश्वास करते थे। He was a very kind and human person, you know, बहुत दयालु थे, जानवरों से प्यार करते थे, घर में बिल्ली और कुत्ता पाल रखा था उन्होंने, उनके अपने बच्चे तो थे नहीं। जब प्रोग्राम बनाते थे बाहर बोर्ड लगाते थे वर्क इन प्रोग्रेस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, और कोई भी झेपत नहीं करता था उनके आसपास कॉरिडोर में आने की भी, क्योंकि पूरा प्रोग्राम बनता था दरवाजा बंद कर लेते थे, उसके बाद 3-4 जने जो भी अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं। जब हम बांग्लादेश गए थे तो वहाँ पे हमने कई रिफ्यूजीज के इंटरव्यू किए थे, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी जो मतलब और एलिजली रेप और मोलेस्ट हुई थी, तो उनके इंटरव्यू तो करके आ गए, पर ये बड़े परेशान थे थोड़ा सा कि रेडियो के अंदर, उस टाइम तो रेडियो मीडियम ही था, दूरदर्शन तो था नहीं उस टाइम, तो उन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूसर थी मधु मालती, उसको पकड़ा और उसको स्टूडियो में ले गए और उनसे कहा कि मुझे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग आपसे चाहिए, मोर्निंग ग्रोनिंग क्राइंग शाउटिंग स्ट्रगलिंग, और 20 मिनट पहले तो उन्होंने आनाकानी की, पर 20 मिनट में इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग की, और वो इंटरव्यूज के पीछे उन्होंने अपने सुपर इम्पोज किया, जिसकी वजह से वो दो प्रोग्राम इतने बढ़िया हुए, The Agony and the Resolve, you know. उसको देख के दो आदमी तो मुझे अच्छी तरह याद है जो बांग्लादेश को डिफेक्ट कर गए थे, सुनने के बाद वो आए थे इनसे मिलने के लिए वहाँ पे।
मेलविल डिमेलो सही मानों में विश्व स्तर के ब्रॉडकास्टर थे, जिन्हें प्रसारण की हर विधा, समाचार वाचन, रूपक, फीचर और कमेंट्री में बराबर की महारत हासिल थी। 1989 में 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
When he died, I was present there. He died in National Heart Institute, you know. इनकी बॉडी को रखा गया वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर 24 घंटे के लिए, रेडियो के लोग आते थे अपना मतलब प्रेस्पेक्ट देने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे इनको क्रीमेट किया गया था, क्योंकि he was born in जोधपुर। हमेशा कहते थे कि भाई मैं तो राजपूत हूँ, मुझे क्रीमेट ही किया जाए, और चांस की बात है कि क्रिमेशन के सारे फॉर्मेलिटी जो थी मैंने कंप्लीट की थी, और मिसेज डिमेलो ने कहा मैं तो देख नहीं सकती तो आप मेरे बिहाफ पे कर दीजिएगा। तो मैं गया था और रेडियो के बहुत सारे लोग थे, इनको हमने मतलब हिंदू स्क्रिप्चर से हिसाब से इनका अलविदा किया था।
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला ऊंची आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने का आदेश दिया है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले को लेकर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि यह डील कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जूमा भ्रष्टाचार के लगभग 800 आरोपों का सामना कर सकते हैं। साल 2009 में उनके खिलाफ ये आरोप खारिज कर दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय का कहना है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। आईपीएल में आज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस के बीच पुणे में मुकाबला हो रहा है। गुजरात लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। नॉर्वे में राहत कर्मियों का कहना है कि उन्हें आज पश्चिमी शहर बर्जन के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जगह से 11 शव बरामद हुए हैं। उनका कहना है कि वे और 2 लोगों की खोज में जुटे हैं जो कि इस दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह हेलीकॉप्टर उत्तरी समुद्र में एक तेल के कुएं के पास से लौट रहा था जब एक पथरीले पहाड़ के पास यह हादसे का शिकार हो गया। पाकिस्तान को अमरीका से 8 F-16 विमान खरीदने के लिए अब पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके लिए किसी तरह की अमरीकी मदद देने पर रोक लगा दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। ठीक डेढ़ घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत।